सबक देखिए भाई आगे, फइन ज़व्वजहुम अलअबु अविल जद्दु यानी सगीर व सगीरत फला खियार लहुमा बाद बुलूगिहिमा लिअन्नहुमा कामिलर रअयि वाफिर शफ़क़ति फ़यल्ज़मु अल-अक़्दु बिमुबाशरतिहिमा कमा इज़ा बाशराहु बिरिज़ाइहिमा बाद अल-बुलूग़ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. گزشتہ سبق میں ولایت اجبار کی تفصیل بیان فرما رہے تھے صاحب ہدایہ. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ صغیر اور صغیرہ جو ہیں उनका वली जब उनका निकाह करवा दे तो वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा और वो सगीरा चाहे बालिगा हो चाहे बाकिरा, दोनों सूरतों में उस पर वली को विलायत इजबार हासिल है. और फिर ये भी आपको बतलाया कि वली जो है हमारे नजदीक आसाबात हैं भाई, और ये उसी तरतीब से हैं जिस तरतीब से वो वरासत के अंदर बयान हुए हैं कि सबसे पहला दर्जा जो है वरासत के अंदर क्या बयान हुआ कि सबसे पहले दर्जे के आसाबात मैयत की औलाद होती है यानी बेटा पोता पड़पोता वगैरह, और दूसरे दर्जे में मैयत के जो उसूल हैं यानी बाप दादा परदादा वगैरह, और तीसरे दर्जे में असल करीब का जूस जो है यानी बाप की औलाद यानी भाई और इसी तरह भाइयों की औलाद नीचे तक भाई, और फिर चौथे दर्जे में जो हैं वो असले बाईद के जूस जो हैं यानी चचा और चचा की औलाद नीचे तक. तो ये आसाबात हैं भाई. तो आसाबात वो मुजक्कर रिश्तेदार के जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में औरत का वास्ता ना आए भाई. तो इंदल अहनाफ ये आसाबात औलिया हैं भाई. अलबत्ता इनमें से जो सबसे करीबी होगा करीब दर्जे वाला होगा वो वली बनेगा और उसके होते हुए बाकियों को विलायत हासिल नहीं होगी भाई. जबकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सगीर और सगीरा पर सिर्फ बाप को विलायत हासिल है और वो भी खिलाफुल कियास नस से साबित है. वजह यह कि विलायत शरीयत तब देती है जब जहां हाजत और जरूरत हो, और सगीर और सगीरा को तो कोई हाजत नहीं क्योंकि उनमें शहवत नहीं है, तो उनको निकाह की हाजत नहीं, लिहाजा उन पर किसी को विलायत भी हासिल नहीं है भाई. तो लिहाजा सगीर और सगीरा पर किसी को विलायत हासिल ही नहीं होनी चाहिए भाई. कियास तो यह तकाजा करता है, लेकिन नस से खिलाफुल कियास जो है बाप के लिए यह विलायत साबित है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम से करवाया 6 साल की उम्र में भाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस निकाह को बरकरार रखा. मालूम हुआ बाप को विलायत हासिल है. तो ये विलायत खिलाफुल कियास नस के जरिए बाप को हासिल है, और वो हुक्म जो खिलाफुल कियास होता है वो अपने मौरिद पर बंद रहता है, लिहाजा ये विलायत सिर्फ बाप ही को हासिल होगी, किसी और को हासिल नहीं होगी, किसी और को हम बाप पर कियास नहीं कर सकते भाई. तो हम जवाब देते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह को कि नहीं, ये जो सगीर या सगीरा पर बाप को विलायत हासिल है ये खिलाफुल कियास नहीं है बल्कि ये कियास के मुआफिक है. वजह यह कि निकाह जो है सिर्फ शहवत की हाजत की वजह से नहीं किया जाता बल्कि निकाह की और भी मसलहतें होती हैं, और ये मसलहतें अमूमन हम पल्ला लोगों के दरमियान ही कामिल तौर पर हासिल होती हैं, और हम पल्ला और बराबर के लोगों का हर वक्त मिलना दुश्वार होता है. लिहाजा बाप वगैरह को विलायत हासिल होनी चाहिए ताकि अगर बचपन में भी कहीं बराबर का रिश्ता मिल जाए तो वहां पर वो उस सगीर या सगीरा का निकाह करवा सकें. तो ये कियास के मुआफिक है. फिर उसके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब जिक्र फरमाया. इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमसे 2 मसलों में इख्तिलाफ फरमाते हैं. एक तो वो फरमाते हैं कि ये विलायत सिर्फ बाप और दादा को हासिल है और असबात को हासिल नहीं. दूसरा वो इख्तिलाफ ये करते हैं कि सगीरा अगर सय्यबा है तो फिर उस पर भी किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं है क्योंकि उसको एक दफा निकाह का तजर्बा हो चुका है तो उसकी कुछ ना कुछ राय बन गई होगी, कुछ ना कुछ उसको निकाह की समझ आ गई होगी, लिहाजा उस पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं। जबकि हमारे नजदीक सगीरह सैयबा जो है वो अगरचे उसको निकाह का तजर्बा हो चुका है लेकिन वो तजर्बा सिगर की हालत में हुआ है जिस वक्त शहवत ही मौजूद नहीं। जब शहवत ही मौजूद नहीं तो इस ममारसत की वजह से, इस तजर्बे की वजह से उसकी कोई राय नहीं बन सकती भाई। और ये सगीरा सैयबा ये भी मोहताज है निकाह की मसलहतों को हासिल करने के लिए, लिहाजा इस पर भी विलायत होनी चाहिए क्योंकि ये सगीरा है, नासमझ है, तो वली को विलायत हासिल होनी चाहिए कि जहां चाहे इसका निकाह करवा दे भाई। और नीज दूसरा इख्तिलाफ हमसे किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कि यह विलायत सिर्फ बाप और दादा को हासिल है, हमारे नजदीक तो और असबात को भी हासिल है, उनके नजदीक सिर्फ बाप और दादा को यह विलायत हासिल है। वो फरमाते हैं वजह यह कि इस विलायत की बुनियाद शफकत है, कि सगीर और सगीरा पर शफकत हो, और यह शफकत बाप और दादा में तो कामिल तौर पर मौजूद है। जैसे बाप अपनी औलाद पर इंतहाई शफकत करता है इसी तरह दादा भी अपनी औलाद और फिर औलाद की औलाद वगैरह पर बे इंतहा शफकत करता है। तो बाप और दादा को यह विलायत मिलनी चाहिए क्योंकि उनमें शफकत ज्यादा है, जबकि बाकी जो असबात हैं वो तो दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे तो जो रिश्ता है वो बाप और दादा के वास्ते से है, तो जब वो दूर के रिश्तेदार हैं तो उनकी शफकत में कमी आ गई, लिहाजा उनको ये विलायत इजबार हासिल नहीं होनी चाहिए। नीज वो फरमाते हैं कि ए अहनाफ, तुम्हारे नजदीक भी विलायत फिल माल सिर्फ बाप और दादा को हासिल होती है। मैंने आपको बतलाया था कि इंदल अहनाफ विलायत इजबार तो बाप और दादा और उसके बाद और असबात को भी मिलेगी, लेकिन विलायत फिल माल जो है यह सिर्फ बाप और दादा को हासिल होती है और असबात को यह विलायत नहीं मिलेगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही थी, वो फरमाते हैं कि ए अहनाफ, एक तसर्रुफ फिल माल है और एक तसर्रुफ फिल नफ्स है कि उसका निकाह करवा दिया जाए, और तसर्रुफ फिल माल अदना दर्जे का है और तसर्रुफ फिल नफ्स आला दर्जे का है। वजह यह कि जान आला है, माल अदना है, माल तो जान की हिफाजत के लिए होता है, तो लिहाजा मालूम हुआ तसर्रुफ फिल नफ्स आला हुआ और तसर्रुफ फिल माल अदना। और ए अहनाफ, आप तसर्रुफ फिल माल की विलायत वो तो सिर्फ बाप दादा को देते हैं और किसी को नहीं देते, यानी जो अदना चीज है उसका इख्तियार सिर्फ बाप दादा को दिया, और जो आला चीज है यानी तसर्रुफ फिल नफ्स वो आपने बाप दादा के अलावा औरों को भी दे दिया। हालांकि जब अदना का इख्तियार सिर्फ बाप और दादा को है तो आला का इख्तियार भी सिर्फ बाप और दादा को होना चाहिए। तो फिर हमने जवाब दिया था कि ये जो विलायत शरीयत देती है ये शफकत की वजह से है, और बाप और दादा को भी इसीलिए ये विलायत दी गई क्योंकि उनमें भी शफकत है, अलबत्ता बाकियों के अंदर शफकत कम होती है, ये बात हमें तस्लीम है। लेकिन हमने इसको जाहिर कर दिया भाई, अहकाम के अंदर फर्क कर दिया, वो इस तरह के बाप और दादा को जो विलायत दी है वो विलायत इल्जाम है, जबकि बाकी औलिया जो है उनको विलायत इल्जाम न दी, इस तरह तलाफी हो जाएगी जी। इस तरह क्या है, तलाफी हो जाएगी। विलायत इल्जाम मैंने बतलाया कि विलायत इल्जाम यह है जो आज आगे साहिब हिदाया भी बयान फरमाएंगे कि बाप और दादा अगर सगीर या सगीरा का निकाह करवा देंगे तो अब यह निकाह लाजिम हो गया, अब इस निकाह को वो बालिग होने के बाद भी फसख नहीं कर सकते, जबकि बाकी औलिया को विलायत इल्जाम नहीं, वो निकाह तो करवा सकते हैं सगीर या सगीरा का लेकिन इसको उन पर लाजिम नहीं कर सकते, चुनांचे सगीर या सगीरा जब बालिग हो जाए तो वो इस निकाह को फसख कर सकते हैं। वजह यह कि बाकियों की शफकत में कमी है, तो कहीं ऐसा ना हो निकाह की मसलहतों में खलल आ जाए, हो सकता है इन्होंने कहीं अच्छी जगह रिश्ता न करवाया हो, यह एहतमाल भी है, लिहाजा इसलिए सगीर और सगीरा को खियार मिल जाएगा जब वो बालिग होंगे कि वो निकाह को फसख कर सकते हैं। तो हमने फर्क कर दिया शफकत के फर्क की वजह से, जिनमें शफकत कामिल थी उनको हमने विलायत इल्जाम दे दी यानी बाप और दादा, और जिनमें शफकत की कमी थी उनको हमने विलायत इल्जाम नहीं दी। तो लिहाजा ये जिनमें शफकत की कमी है ये जब निकाह करेंगे तो इसकी तलाफी मुमकिन है। अगर खलल और खराबी आए यानी अच्छी जगह रिश्ता नहीं करवाया तो उसकी तलाफी मुमकिन है कि उन बच्चों को इख्तियार दे दिया जाए बालिग होने पर। तो देखा तसर्रुफ नफ्स के अंदर तलाफी मुमकिन है, कम शफकत वालों को भी इख्तियार दे दिया फिर भी वहां तलाफी मुमकिन है कि उस निकाह को फसख कर दें। जबकि माल जो है उसका इख्तियार हमने बाप दादा के अलावा और किसी को नहीं दिया। वजह यह कि माल के अंदर अगर कोई खलल आ गया तो फिर उस खलल की तलाफी मुमकिन न रहेगी, इसलिए क्योंकि माल एक हाथ से निकलता है दूसरे हाथ में चला जाता है, दूसरे से निकलता है तीसरे में हाथ में चला जाता है, वहां तलाफी नहीं हो सकती। मसलन ये सगीर या सगीरा की कोई जमीन है और वो वली इस जमीन को आगे बेच देता है तो फिर अब तलाफी नहीं हो सकती, ये जमीन वापस इनके पास नहीं आ सकती, क्योंकि जो खरीदार होगा वो आगे किसी और को बेच देगा, उससे अगला खरीदार होगा वो किसी और को बेच देगा। तो देखो इस तसर्रुफ फिल माल के अंदर तकरार होता चला जाता है, वहां तलाफी की कोई सूरत नहीं। और हम यह भी नहीं कर सकते कि खरीदार को कहें कि भाई ये जमीन आपने अपने पास रखनी है, आपने इसको आगे नहीं बेचना, ये सगीर और सगीरा की जमीन थी, ये जब बालिग हो जाएंगे ताकि इनके पास फसख का इख्तियार रहे। भाई फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं, किस के जब मैं आगे जमीन को बेच ही नहीं सकता तो फिर मेरे खरीदने का क्या फायदा है। तो लिहाजा मालूम हुआ तसर्रुफ फिल माल के अंदर तकरार होता है और वहां जब खराबी आ जाए तो फिर वहां तलाफी की कोई सूरत नहीं रहती। लिहाजा तसर्रुफ फिल माल जो है सिर्फ उन औलिया को मिलना चाहिए जिनको विलायत इल्जाम है, जहां शफकत कामिल है, जो एक दफा तसर्रुफ कर दें तो वहां उसको फिर फसख करने की हाजत पेश न आए। भाई तो इसलिए हमने सिर्फ बाप और दादा को तसर्रुफ फिल माल दिया क्योंकि सिर्फ उनके पास विलायत इल्जाम है, जबकि बाकियों के पास विलायत इल्जाम नहीं है, लिहाजा उनको तसर्रुफ फिल माल का हक भी नहीं दिया। भाई फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमाई। वो फरमाते हैं कि सैयब सगीरा पर विलायत इजबार किसी को हासिल नहीं, वजह यह कि इसको एक दफा निकाह का तजर्बा हो चुका है, लिहाजा इसकी कुछ ना कुछ राय बन गई होगी निकाह के बारे में क्योंकि इसको एक दफा तजर्बा हो चुका है। लेकिन समझ इसको आई है या नहीं, अकल इसको आई है या नहीं, यह तो एक बातनी चीज है, इसका वैसे तो पता नहीं चल सकता। तो जब हुक्म की इल्लत जो है उस पर मुत्तले होना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए, तो फिर इस सूरत में उस हुक्म का दारोमदार सबब पर कर दिया जाता है। तो लिहाजा तो विलायत इजबार का दारोमदार था समझ होने पर, अगर समझ है तो विलायत इजबार नहीं, अगर समझ नहीं है तो विलायत इजबार है, लेकिन वो तो पता नहीं चल सकती, समझ और अकल का तो पता नहीं चल सकता, लिहाजा इसका दारोमदार जो है वो सैयबा होने पर कर दिया गया। सैयबा है तो मालूम हुआ समझ है और विलायत इजबार किसी को नहीं, और अगर सैयबा नहीं मालूम हुआ ना समझ है तो अब विलायत इजबार औलिया को हासिल होगी। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि हमने जो कहा था कि विलायत बाप दादा के अलावा और असाबात को भी हासिल होगी, हमारी इस बात की ताईद हदीस से भी होती है। हदीस में भी आता है अन निकाह इलल असाबाती, निकाह जो है असाबात के सुपुर्द है। और मैंने बतलाया बाज अहादीस में निकाह की जगह अल इनकाह आया है, निकाह करवाना, अल इनकाह इलल असाबाती, निकाह करवाना असाबात के सुपुर्द है। तो यहां पर देखो बाकी असाबात और बाप दादा में कोई फर्क नहीं किया गया, मुतलकन तमाम असाबात मुराद हैं यहां पर। और फिर आखिर में साहिब हिदायत ने बतलाया था कि असाबात के अंदर जो है दर्जा बदर्जा हर एक को विलायत मिलेगी, पहले दर्जे वाले अगर मौजूद हैं यानी औलाद तो उन्हीं को विलायत मिलेगी और किसी को विलायत नहीं, और औलाद में फिर एक दर्जे वाले अगर कई हो तो फिर उनमें से जो सबसे करीब वाला हो तो उसको विलायत मिलती है। बेटा और पोता दोनों पहले दर्जे वाले हैं, अगर दोनों मौजूद हैं तो इनमें से फिर करीब वाले को जो है विलायत यानी बेटे को विलायत मिलेगी पोते को नहीं, अगर बेटा ना हो फिर पोते को, अगर पोता भी ना हो फिर पड़पोते को। तो यह विलायत दर्जा बदर्जा लोगों को मिलेगी, और इसमें अगर एक ही दर्जे वाले कई अफराद हों तो सबसे करीब वाले को देखा जाएगा, और दूसरा दर्जा उसूल का है, और तीसरा दर्जा जो है असल करीब का जुज यानी भाई और नीचे उनकी मुजक्कर औलाद है नीचे तक भाई, और चौथा दर्जा जो है असल बईद यानी दादा की औलाद चचा और उनकी चचा की नीचे तक मुजक्कर औलाद है ये सब इसमें दाखिल हैं। और फिर मैंने ये भी बतलाया था अगर एक ही दर्जे वाले दो बराबर अफराद मौजूद हैं बराबर के अफराद हैं जहां कराबत बराबर दर्जे की है जैसे दो भाई हैं या दो चचा हैं तो फिर इनमें से जहां कुव्वत कराबत होगी उसको ये इख्तियार होगा भाई। मसलन एक भाई हकीकी भाई है और एक अल्लाती भाई है तो हकीकी भाई को इख्तियार होगा अल्लाती को नहीं, और या एक हकीकी चचा है और एक अल्लाती चचा है तो हकीकी चचा मुकद्दम होगा। अगर हकीकी चचा नहीं तो फिर अल्लाती चचा, अगर अल्लाती चचा भी नहीं तो फिर हकीकी चचा की औलाद, अगर हकीकी चचा की औलाद भी नहीं फिर अल्लाती चचा की औलाद। तरतीब समझ में आ रही है। अब आइए आज के सबक पर। فَإِنْ زَوَّجَهُمَ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ يَعْنِي الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا। भाई अब साहिब हिदाया वो विलायत इल्जाम बयान कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता सबक में जिक्र कर दिया था कि बाप और दादा जो हैं इनको विलायत इल्जाम हासिल है, यानी विलायत इजबार तो बाप दादा को भी हासिल है और बाकी औलिया को भी दर्जा बदर्जा, लेकिन बाप और दादा को जो विलायत इजबार हासिल है वो विलायत इल्जाम है, यानी वो अगर सगीर या सगीरा का निकाह करवा देंगे अब सगीर या सगीरा बालिग होने के बाद भी इसको फसख नहीं कर सकते, जबकि बाकी औलिया अगर निकाह करवाएंगे वो निकाह मुनाकिद तो हो जाएगा लेकिन उनको विलायत इल्जाम नहीं है, वो इस निकाह को इन पर लाजिम नहीं कर सकते, लिहाजा सगीर या सगीरा को बालिग होने के बाद इख्तियार मिल जाएगा। वो अगर इस निकाह को फसख करना चाहते हैं तो फसख कर देंगे। और यह भी याद रखना भाई कि बाप और दादा जहां भी निकाह करवा दें चाहे अपने बराबर वालों में करवाएं चाहे अपने से कम दर्जे वालों में करवाएं, और नीज चाहे वो महरे मिसल के अंदर लड़की का निकाह करवाएं चाहे बहुत कम महर के अंदर निकाह करवा दें, या अगर लड़के सगीर का निकाह करवा रहे हैं तो जहां निकाह करवाया मसलन उस लड़की का महर 5 लाख होना चाहिए था इन्होंने 10 लाख में महर के अंदर निकाह करवा दिया, तो जिस तरह भी बाप और दादा निकाह करवा देंगे वो लाजिम हो जाएगा वहां ये सगीर और सगीरा को बालिग होने के बाद भी कोई इख्तियार नहीं होगा। वजह यह कि बाप और दादा को विलायत इल्जाम हासिल है, वो जो ये जो तसरुफ करेंगे वो सगीर या सगीरा पर लाजिम हो जाएगा भाई, जबकि बाकियों को विलायत इल्जाम हासिल नहीं, लिहाजा अगर वो निकाह करवाएंगे वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कम दर्जे वालों में निकाह करवाया तो फिर वो निकाह ही नहीं होगा, या उन्होंने लड़की का महर बहुत कम मुकरर कर दिया सगीरा का तो भी निकाह हो गई नहीं, या उन्होंने लड़के का निकाह करवाना था सगीर का बहुत ज्यादा महर मुकरर कर दिया तो इस सूरत में भी निकाह होगा ही नहीं। तो बाकी औलिया को विलायत इल्जाम भी नहीं और नीज वो महरे मिसल वगैरह के अंदर ही निकाह करवा सकते हैं और कुफ में निकाह करवा सकते हैं, गैर कुफ में गैर बराबर के लोगों में जो लोग बराबर के नहीं है उनमें निकाह भी नहीं करवा सकते। अब देखिए भाई कहते हैं फइन ज़व्वजहुम अल-अबु अविल जद्दू, और अगर इस सगीर या सगीरा का निकाह बाप या दादा ने करवा दिया, फइन ज़व्वजहुमा यह हुमा जमीर इन दोनों का निकाह करवा दिया, अब इससे क्या मुराद है, साहिब हिदाया जमीर का मर्जे बतला रहे हैं यानी सगीर व सगीरता यानी सगीर और सगीरा का निकाह अगर बाप दादा ने करवा दिया, फला खियार लहुमा तो इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं होगा, बाद बुलूगिहिमा इनके बालिग होने के बाद, लिअन्नहुमा कामिला रई वाफिर शफकती इसलिए क्योंकि ये दोनों यानी बाप और दादा जो हैं कामिल राय वाले हैं, कामिल राय वाले हैं समझदार हैं, वाफिर शफकती और खूब कसीर शफकत वाले हैं, तो इनकी शफकत भी कामिल और समझ और अकल भी कामिल, लिहाजा इनके ये निकाह करेंगे तो वो लाजिम हो जाएगा। भाई इबारत देख लीजिए, लिअन्नहुमा कामिलर राय लिअन्नहुमा कामिलर राय ये असल में तस्निया है कामिलानी, लिअन्नहुमा कामिलानी और इसकी इजाफत हो रही है अर्राय की तरफ, तो नून तस्निया वाला जो है वो इजाफत की वजह से गिर गया और फिर अलिफ भी गिर जाएगा इज्तिमाए साकिनेन की वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे, लिअन्नहुमा कामिलर राय, कि ये दोनों कामिल राय वाले हैं। इसी तरह आगे आ रहा है वाफिरा वाफिरा शफकती, ये असल में है वाफिरानी वाफिरानी, ये भी तस्निया है, तो अशफकत की तरफ इसकी इजाफत हुई तो नून गिर गया और फिर अलिफ भी इज्तिमाए साकिनेन से गिर गया। तो ये दोनों वाफिर शफकत वाले हैं यानी कसीर शफकत वाले हैं। तो कहते हैं ली अन्ना हुमा कामिला ये वाफिरा शफकती, इसलिए क्योंकि ये दोनों कामिल राय वाले हैं कसीर शफकत वाले हैं। फयल जमुल अक्द बी मुबाशरती हिमा, तो अकद लाजिम हो जाएगा बी मुबाशरती हिमा, इन दोनों के सरंजाम देने से। मुबाशरत का माना किसी काम को सरंजाम देना, खुद करना। तो फयल जमुल अक्द, तो ये अकद लाजिम हो जाएगा बी मुबाशरती हिमा, इन दोनों के सरंजाम देने से। कमा इदाबा शराहु बी रिजा इहिमा बादल बुलूगी, कहते हैं ये इसी तरह है जैसे बालिग होने के बाद इनके बाप और दादा निकाह करवाते हैं और इनसे इजाजत लेकर निकाह करवाते हैं, तो फिर वो निकाह नाफिज हो जाता है। तो जैसे बालिग होने के बाद उस लड़के या लड़की की रजामंदी से बाप या दादा निकाह करवाते हैं तो वो निकाह लाजिम हो जाता है क्योंकि उनकी रजामंदी है भाई, तो जैसे वो निकाह लाजिम होता है, यहां ये निकाह भी इस सगीर और सगीरा पर लाजिम हो जाएगा। ये माना है कमा इदा बाशाराहू, जैसे कि ये बाप दादा ने इस आकद को सरंजाम दिया हो बी रिजा इहिमा, इन दोनों की रजामंदी से। बाद अल बुलूगी, बालिग होने के बाद, तो ये इसी तरह होगा, ये इसी तरह होगा जैसे बाप और दादा ने इस सगीर या सगीरा का निकाह इनकी मर्जी से करवाया है बालिग होने के बाद। भाई बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। फयल जमुल अक्द बी मुबाशरती हिमा कमा इदा बाशराहु बी रिजा इहिमा बादल बुलूगी, कि ये अकद लाजिम हो जाएगा बाप और दादा के सर अंजाम देने से, जैसे कि इन दोनों ने इस अकद को सर अंजाम दिया हो सगीर और सगीरा की रजामंदी से। बादल बुलूगी, बालिग होने के बाद, ये इसी तरह होगा। आगे देखिए, वह इन सजहुमा गैर उल अबी वल जद्दी फली कुल्ली वाहिदिन मिन हुमल खियारु इदा बलगा, वह इन सजहुमा गैर उल अबी वल जद्दी, और अगर बाप और दादा के अलावा कोई और इस सगीर या सगीरा का निकाह करवाए, फली कुल्ली वाहिदिन मिन हुमल खियारु इदा बलगा, तो इनमें से हर एक को इख्तियार होगा जब ये बालिग हो जाए, यानी ये सगीर और सगीरा जब बालिग हो जाए तो इन दोनों में से हर एक को इख्तियार होगा। इंशा अकाम अला निकाह व इंशा फसखा, अगर चाहें तो निकाह पर कायम रहें और अगर चाहें तो निकाह को फसख कर दें। वहादा इंदा अबी हनीफत व मोहम्मद इन रहिमहुमल्ला, और ये तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्ला ला खियार लहुमा, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई और वली निकाह करवा दे फिर भी सगीर और सगीरा को कोई इख्तियार नहीं। एतबारम बिल अबी वल जद्दी, कयास करते हुए बाप और दादा पर। भाई ये जगह अच्छी तरह समझ लें, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे बाप और दादा जो हैं वो निकाह करवा दें तो वह लाजिम हो जाता है, उसको फसख नहीं किया जा सकता बालिग होने के बाद भी। इसी तरह अगर और अवलिया भी निकाह करवाएंगे तो वो भी शफकत वाले हैं बाप और दादा की तरह, लिहाजा उनका करवाया हुआ निकाह भी ये फसख नहीं कर सकते बालिग होने के बाद। मालूम हुआ ये जो फसख का इख्तियार देते हैं ये सिर्फ तरफेन दे रहे हैं, बाकी अवलिया अगर निकाह करवाएंगे बाप और दादा के अलावा तो फिर फसख का इख्तियार होगा सगीर या सगीरा को बालिग होने पर। यह इख्तियार किसके नजदीक है, तरफेन के नजदीक है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक यह इख्तियार नहीं है भाई। तो यह याद रखना, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक सगीर और सगीरा को खियार नहीं होता, आगे इसका जिक्र आएगा भाई। आगे देखिए, वलहुमा, और तरफेन की दलील यह है। अब तरफेन की दलील आ गई, वो क्या फरमाते हैं, बाप और दादा के अलावा कोई और वली करवाएगा तो वहां वो सगीर और सगीरा फसख कर सकते हैं। वजह यह कि बाकियों की कराबत बाप और दादा के वास्ते से है, तो उनकी कराबत जरा दूर की हुई तो उनमें शफकत की कमी आ गई। तो अब पता नहीं वो निकाह की मसलहतें हासिल होंगी या नहीं, पता नहीं इन्होंने अच्छी जगह निकाह करवाया है या निकाह नहीं करवाया। अगर अच्छी जगह करवाया फिर तो मसलहतें हासिल हो जाएंगी, लेकिन एहतमाल यह भी है हो सकता है इन्होंने ज्यादा अच्छी जगह निकाह न करवाया हो तो वह निकाह की मसलहतें हासिल नहीं होंगी, उनमें खलल आएगा भाई। लिहाजा इसलिए अब सगीर और सगीरा को फसख का इख्तियार मिलना चाहिए भाई। तो वलहुमा तरफैन की दलील यह है कि अन्ना कराबत अल अखी नाकिसत, उनके भाई की कराबत यानी रिश्तेदारी नाकिसत, उन वो नाकिस है, कम दर्जे की है, क्योंकि बाप के वास्ते से है, बराह रास्त रिश्तेदारी नहीं। और देखो बाकी अवलिया में से भाई को जिक्र किया, पहला दर्जा किसको है, यह सगीर या सगीरा पर किसको विलायत है, बाप को, या अगर बाप नहीं है तो दादा को, दादा नहीं है तो परदादा को। इनके बाद जो बाकी आसाबात जो हैं उनमें भाई का नंबर पहला है जी। बाप और दादा के बाद अगला नंबर किसका है, भाई का है। और साहिबे हिदायत फरमा रहे हैं अन्ना कराबत अल अखी नाकिसतुन, भाई की जो कराबत और रिश्तेदारी है उसमें कमी है। तो जब बाप और दादा के बाद जिसका दर्जा है जब उसकी कराबत में कमी है तो उससे अगले दर्जे वालों में तो बतरीके औला क्या होगी, कमी होगी। वो आप इसी पर कयास कर सकते हैं। तो कहते हैं अन्ना कराबत अल अखी नाकिसत, उन तरफैन फरमाते हैं कि भाई की रिश्तेदारी जो है उसमें कमी है। वन नुकसान युशइरु बिकुसूरि शफ़क़ति, और रिश्तेदारी में जो ये कमी है, युशइरु ये खबर देती है, बिकुसूरि शफ़क़ति शफ़क़त की कमी का, जब रिश्तेदारी में कमी है तो मालूम हुआ शफ़क़त में भी कमी होगी। फ़यततर्रक़ुल ख़ललु इलल मक़ासिदि असा, ततर्रुक का माना है दाखिल होना, पहुंचना। फयततर्रकुल खललु, तो खलल आ जाएगा, खलल दाखिल होगा। इलल मकासिद, मकासिद की तरफ, यानी वो जो निकाह के मकासिद हैं उनके अंदर खलल आ जाएगा। आसा शायद जी। देखो यहां साहिबे हिदाया ने सिर्फ आसा जिक्र फरमाया, ये जो आसा है ये तरज्जी के लिए आता है, और आपने पढ़ा है इसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर चाहिए, लेकिन साहिब हिदाया ने आसा के बाद ना इसके इसम को जिक्र किया और ना इसकी खबर को जिक्र किया। तो आम उलमाए अरबियत फरमाते हैं कि अरबी जुबान में ये इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये साबित नहीं है कि आसा इस्तेमाल हो जाए बगैर अपने इसम और बगैर अपनी खबर के, लेकिन साहिब हिदाया ने इस्तेमाल फरमाया है भाई। हो सकता है आप लोगों के नजदीक साबित ना हो, लेकिन साहिब हिदाया तो बहुत बड़े अदीब हैं, उनकी ये किताब फसाहत और बलागत का शाहकार है भाई। मैंने आपको बतलाया था अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हिदाया जैसी चंद सतरें भी नहीं लिख सकता, इतनी फसीह और बलीग इबारतें हैं हिदाया की। तो जब साहिब हिदाया आसा जिक्र फरमा रहे हैं बगैर इसम और खबर के, तो मालूम हुआ उनके नजदीक साबित होगा जब भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वो इस्तेमाल न करते भाई। तो तर्जमा कैसे करेंगे, देखो आसा का माना कर लेंगे शायद, इधर देखिए बाकी रिश्तेदारों में रिश्तेदारी में कमी है तो शफकत में भी कमी होगी, और जब शफकत में कमी है तो शायद कहीं निकाह के मकासिद में खलल ना आ जाए, खराबी ना आ जाए, अच्छी जगह रिश्ता ना करवाए तो निकाह के मकासिद में खलल आ जाएगा भाई। तो कहते हैं फयततर्रकुल खललु इलल मकासिदी, तो खलल दाखिल हो जाएगा मकासिद में। आसा शायद, यानी शायद को जरा शुरू में ले आए उर्दू के मुताबिक, तो शायद निकाह के जो मकासिद हैं उनमें खलल आ जाए। व तदारुकु मुमकिन, और तलाफी मुमकिन है, ये खलल आ सकता है लेकिन इसकी तलाफी मुमकिन है। बिखियार इल इदराकी, खियार बुलूग के जरिए, इदराक का माना भी बालिग होना, बुलूग का माना भी बालिग होना, और अदरक युद्री को इदराक का एक माना क्या है, बालिग होना। तो कहते हैं व तदारुकु मुमकिन बिखियार इल इदराकी, और तलाफी मुमकिन है खियार बुलूग के जरिए। ये जो सगीर और सगीरा को बालिग होने पर शरीयत इख्तियार देती है निकाह के फसख करने का, इसको खियार बुलूग कहते हैं। क्या कहते हैं, खियार बुलूग। तो कहते हैं यहां पर अगरचे इनकी शफकत में कमी है और उसकी वजह से मकासिद में खलल आ सकता है, लेकिन बहरहाल उसकी तलाफी मुमकिन है कि सगीर और सगीरा को खियार बुलूग दे दिया जाए। आगे देखिए वह इतलाकुल जवाबी फी गैरिल अबी वल जद्दी यतनावलुल उम्म वल काजिया वह हुआ सही हुमिनर रिवायती, भाई मैंने आपको रिश्तेदारों में तरतीब बतलाई थी कि असबात जो हैं वो मर्द रिश्तेदार हैं कि जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में औरत का वास्ता न आए, और असबात के अलावा और जो रिश्तेदार हैं उनको जवील अरहाम कहते हैं भाई, जवील अरहाम कहते हैं। तो मैंने बतलाया था कि अगर असबात में से कोई ना हो तो फिर जवील अरहाम को विलायत मिल जाएगी, विलायत इजबार भाई। तो जवील अरहाम में तमाम औरतें भी दाखिल हो गई, यानी मां है, खाला है, फूफी वगैरह, और नीज वो मर्द भी दाखिल हो गए जिनसे औरत के वास्ते से रिश्ता है, जैसे नाना है, नाना से मां के वास्ते से रिश्ता है, और मामू है, मामू मामू के साथ भी रिश्ता पहले मां से है, फिर नाना से है, फिर ये नाना का बेटा है, तो मां और नाना के वास्ते से मामू से रिश्ता है, तो देखो दरमियान में औरत का वास्ता आ गया। तो जबील अरखाम में सब औरतें भी दाखिल हो गई और वो मर्द रिश्तेदार भी दाखिल हो गए जहां दरमियान में औरत का वास्ता आ रहा हो। और मैंने आपको कल बतलाया था कि असबात ना हो तो फिर जवील अरहाम जो है उनको भी विलायत इजबार मिलेगी, और उनमें सबसे पहले दर्जे पर मां है, तो मां को विलायत इजबार मिलेगी सगीर और सगीरा पर। अगर मां नहीं है, वफात पा चुकी है, तो फिर दादी को यह विलायत इजबार मिलेगी। अगर दादी भी नहीं है तो फिर नानी को यह विलायत इजबार मिलेगी। अगर नानी भी नहीं है फिर नाना को विलायत इजबार मिलेगी, और अगर नाना भी नहीं है फिर इस सगीर या सगीरा की अगर बालिग बहने हैं उनको विलायत इजबार मिलेगी। फिर बहनों के अंदर जो हकीकी बहने हैं वो मुकदम होंगी अल्लाती बहनों पर। बात समझ में आ रही है, बात चल रही थी वह इतलाकुल जवाबी फी गैरिल अबी वल जद के ऊपर। मतन में इन्होंने बतला दिया कि बाप और दादा को विलायत इल्जाम है, बाप और दादा के अलावा और किसी को विलायत इल्जाम नहीं, बाकी सब के अंदर सगीर और सगीरा को खियार बुलूग मिलेगा बालिग होने पर, और बाकी सब के अंदर मां भी आ गई और बाकी सब के अंदर काजी भी आ गया। मैंने बताया अगर असबात भी नहीं है, जवील अरहाम भी नहीं है, तो सबसे आखिर में काजी को यह इख्तियार मिलता है, लेकिन काजी को भी यह इख्तियार तब मिलेगा जब बादशाह ने उसको बाकायदा इजाजत दी हो कि तुम यतीमों का निकाह करवा सकते हो भाई, वरना अगर इजाजत नहीं दी तो फिर काजी को यह इख्तियार नहीं है। तो सबसे आखिरी दर्जा काजी का है। तो जब इन्होंने कहा बाप और दादा के अलावा सब में खियार बुलूग मिलेगा, तो इसमें मां भी दाखिल हो गई, मालूम हुआ मां भी अगर निकाह करवाएगी तो सगीर और सगीरा को खियार बुलूग मिलेगा, काजी भी निकाह करवा देगा तो सगीर या सगीरा को खियार बुलूग मिलेगा। तो साहिब हिदायत बतलाएंगे कि हां मसला इसी तरह है, मां करवाए या काजी करवाए निकाह, सब में खियार बुलूग मिलेगा भाई। तो कहते हैं वह इतलाकुल जवाबी, और जवाब का मुतलक होना फी गैरिल अबी वल जद्दी, बाप और दादा के अलावा में, यानी ये जो ऊपर मुतलक जवाब दिया कि बाप और दादा के अलावा, यानी मुतलक है सब इसमें आ गए, इसमें मां का भी इस्तेसना नहीं, इसमें काजी का भी इस्तेसना नहीं, तो सब इसमें आ गए। तो कहते हैं वह इतलाकुल जवाबी, और ये जवाब का मुतलक होना, यानी ये जो ऊपर मसला जिक्र किया गया इसका मुतलक होना फी गैरिल अबी वल जद्दी, बाप और दादा के अलावा में, यह तनावलुल उम्म वल काजिया, ये मां को भी शामिल है और काजी को भी शामिल है। वह हुआ सहीह मिनर रिवायती, और यही सही है रिवायत में से, यानी याद रखो इसमें इमाम साहब से एक और रिवायत भी आती है, इमाम साहब के एक शागिर्द रिवायत फरमाते हैं कि अगर काजी निकाह करवा देगा तो फिर काजी जो है उसको कामिल विलायत हासिल होती है, लिहाजा वहां खियार बुलूग नहीं मिलेगा। लेकिन साहिब हिदायत क्या फरमा रहे हैं कि सही यह है कि काजी भी निकाह करवा दे तो खियार बुलूग मिलेगा भाई। तो ये कहते हैं वह हुआ सहीह मिनर रिवायती, और यही सही है रिवायत में से, लिकुसूर रय फी अहदिहिमा व नुकसानी शफकत फिल आखरी, इसलिए क्योंकि एक में राय की कमी है और दूसरे में शफकत की कमी है। देखो मां जो है, मां की शफकत तो कामिल है, लेकिन मां औरत है और औरतें क्या हैं, नाकिसातुल अकल हैं, हदीस के अंदर आया है, मालूम हुआ इनकी अकल में कुछ फर्क है, कुछ कमी है भाई, जब ही हदीस के अंदर जिक्र आया, लिहाजा उसकी अकल जब कामिल नहीं है तो मां की शफकत तो कामिल लेकिन उसकी राय और अकल कामिल नहीं, लिहाजा खियार बुलूग मिलेगा। और काजी, काजी अगरचे उसकी राय कामिल है, वो समझदार है, लेकिन उसकी शफकत कामिल नहीं है क्योंकि वो तो अजनबी है भाई। ये माना है लिकुसूर रय फी अहदिहिमा, राय की कमी की वजह से एक में, व नुकसान शफकती फिल आखरी और दूसरे में शफकत की कमी की वजह से खियारे बुलूग मिलेगा भाई। फयतखय्यरु लिहाजा इख्तियार होगा, यानी हर एक को, सगीर और सगीरा में से हर एक को इख्तियार होगा खियारे बुलूग होगा। वयुश्तरतु फीहि अल-क़ज़ाउ बिखिलाफ़ खियारे इत्क़ी, और नीज इसके अंदर क़ज़ा भी शर्त होगी बखिलाफ खियारे इत्क के। भाई एक तो खियारे बुलूग है, अभी जिक्र गुजर गया, सगीर और सगीरा का अगर निकाह करवाया है बाप और दादा के अलावा किसी और ने, तो बालिग होने पर इनको खियारे बुलूग मिलेगा, ये अपना निकाह फसख कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, याद रखो, ये कह दे हमने निकाह फसख किया तो इससे फौरन निकाह फसख नहीं होगा, बाकायदा काजी के पास जाकर फसख करवाना पड़ेगा, बाकायदा काजी के पास जाकर फसख करवाना पड़ेगा। तो मालूम हुआ खियारे बुलूग के अंदर कजाए काजी जरूरी है, काजी फैसला करेगा फिर उनमें जुदाई आ जाएगी, उससे पहले फसख नहीं होगा। लेकिन याद रखना, याद रखना, लड़की की खामोशी रजामंदी होती है, बाकेरा की खामोशी भी क्या है, रजामंदी है। लिहाजा लड़की जिस मजलिस में बालिग हो, जिस मजलिस में उसको हैज शुरू हो, उसको फौरन खियारे बुलूग का इस्तेमाल करना जरूरी है जी। वो फौरन कहे मैं इस निकाह को फसख करती हूं, यानी यूं समझो उसके जहन में पहले से एक बात मौजूद हो, वो अपने इस निकाह पर, वो सगीरा मसलन खुश नहीं है, तो वो अपने जहन में ये बात रखे जिस मजलिस में बालिग हो, जिस मजलिस में हैज शुरू हो, फौरन कहे मैं अपने इस निकाह को फसख करती हूं, ये जो मेरे औलिया ने मेरा निकाह करवाया था फलां जगह, मैं इसको फसख करती हूं, ये उसका कहना जरूरी है। ये कहेगी और फिर बाद में काजी के पास भी चली जाए कि काजी साहब मैंने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया था, अब आप हम दोनों में जुदाई करवा दें। लेकिन अगर ये उस वक्त खामोश रही, फिर ये निकाह पर राजी हो गई, जब निकाह पर राजी हो गई तो अब इसका इख्तियार खत्म हो गया, अब ये काजी के पास जाकर तफरीक नहीं करवा सकती। बात समझ में आ गई, अब इख्तियार इसके हाथ से निकल गया। जबकि लड़का जो है वो जब बालिग होता है, लड़के का जुबान से रजामंदी का इजहार जरूरी होगा, या कोई ऐसा अमल कर दे जिससे रजामंदी का पता चल जाए, मसलन उस लड़की को उसने महर भिजवा दिया, मालूम हुआ ये इस निकाह पर राजी है। बात समझ में आ गई, बात चल रही थी खियारे बुलूग की, तो लड़का जब बालिग हो जाए तो उसके खामोश रहने से उसका खियारे बुलूग खत्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसकी खामोशी उसकी रजामंदी की अलामत नहीं है। जब तक वो जुबान के जरिए जिक्र ना कर दे कि मैं इजाजत देता हूं या इजाजत नहीं देता। फिर सुने, फिर सुने, ये मसला बार बार आगे चलता रहेगा। याद रखो, ये जिनको खियारे बुलूग मिलता है ये तीन किस्म के अफराद हो सकते हैं, या जिसका निकाह करवाया गया है वो सगीर था यानी लड़का था, अब बालिग हुआ, या वो सगीरा थी अब बालिगा हुई। लेकिन सगीरा में तो दो सूरतें मुमकिन हैं, या वो सगीरा बाकेरा होगी या वो सगीरा सैयबा होगी, यानी खावंद इसके साथ बालिग होने से पहले ही सोहबत कर चुका है। तो गोया तीन किस्म के अफराद हो गए जिनको खियारे बुलूग मिलता है, एक बाकेरा है, एक सैयबा है और एक लड़का है भाई। तो ये तीन किस्म के अफराद हैं जिनको खियारे बुलूग मिल सकता है, यानी सगीर और सगीरा सैयबा और सगीरा बाकेरा। इन तीनों के इब्तिदाए निकाह के अंदर इनकी हालत देख लो, जो वहां इनका हुक्म था यहां पर भी उनका वही हुक्म होगा, यानी इनका खियारे बुलूग कब तक रहेगा और कब इनका खियारे बुलूग जो है वो बातिल हो जाएगा, तो इनकी इब्तिदाए निकाह की हालत देख लीजिए। इब्तिदाए निकाह जब ये तीनों बालिग हों, मसलन बाकेरा बालिगा हो या सैयबा बालिगा हो या लड़का बालिग हो, आप जानते हैं कि बालिग पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं होती, वली जबरदस्ती इनका निकाह जहां चाहे नहीं करवा सकता, बल्कि इनसे इजाजत लेना पड़ेगी। अब इनसे इजाजत का क्या तरीका है, आपको साहिब हिदायत ने बतलाया था कि अगर वो बालिगा जो है वो बाकेरा है तो उसकी खामोशी भी रजामंदी की अलामत है। वली उसका निकाह करवाना चाहता है और उससे जाकर पूछता है कि मैं फलां जगह फलां शख्स से तुम्हारा निकाह करवाना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारी तरफ से इजाजत है, तो बाकेरा बालिगा खामोश रही तो यह खामोशी भी रजामंदी की अलामत है। जबकि सैयबा बालिगा और जो लड़का है उनका जुबान से इजाजत देना जरूरी है, उनकी खामोशी रजामंदी की अलामत नहीं। तवज्जो है, मैं निकाह की बात कर रहा हूं, ये खियार बुलूग के मसले को जरा छोड़ दें। निकाह के मसले में वली इनका निकाह करवाना चाहता है, तीनों से इजाजत लेना पड़ेगी, लेकिन बाकिरा बालिगा के अंदर इजाजत लेते हुए अगर वो खामोश भी रही तो ये खामोशी रजामंदी की अलामत है। जबकि सैयबा बालिगा या वो जो लड़का बालिग है, इनसे जब वली इजाजत लेने गया तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत नहीं है, बल्कि इनका बाकायदा जुबान से इजाजत देना जरूरी है भाई। इसी तरह यहां पर भी जब ये बालिग होंगे तो वही अहवाल यहां भी जारी होंगे। इब्तिदाए निकाह के मौका पर ये इन तीनों के जो अहवाल थे वही अहवाल यहां पर खियारे बुलूग के मौका पर भी जारी होंगे। तो अब देखो एक एक की हालत देखते जाएं, इब्तिदाए निकाह को भी और यहां पर भी। अब बाकेरा जो है वो बालिग हुई तो इसको खियारे बुलूग मिलेगा, तो इसको फौरन ऐलान करना पड़ेगा कि मैं इस निकाह को फसख करती हूं या मैं इस निकाह को रद्द करती हूं। वजह यह कि अगर इसने कुछ देर भी गुजार दी तो खामोशी पाई गई, और बाकिरा की खामोशी रजामंदी की अलामत होती थी। जब वली उसे निकाह की इजाजत लेने आता था तो उसकी खामोशी रजामंदी की अलामत समझी जाती थी। तो यहां पर भी जब इसको खियार बुलूग मिला तो इसको फौरन उस खियार को इस्तेमाल करते हुए निकाह को रद्द करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ी देर भी खामोश रही तो खामोशी पाई गई, और बाकिरा की खामोशी तो रजामंदी की अलामत होती है, लिहाजा ये निकाह इस पर लाजिम हो जाएगा। अब ये काजी के पास जाकर भी तफरीक नहीं करवा सकती भाई। जबकि इसके मुकाबले में जब सैयबा बालिग हुई तो सैयबा बालिगा से जब वली निकाह की इजाजत लेता था तो जुबान से उसका कहना जरूरी होता था। इसी तरह लड़का बालिग हो तो वली उसका निकाह करवाना चाहे तो जुबान से लड़के की इजाजत जरूरी है। लिहाजा ये जो सैयबा बालिग हुई या ये जो लड़का बालिग हुआ, इनको खियार बुलूग मिलेगा, लेकिन इनका खियार बुलूग खामोश रहने से बातिल नहीं होगा। ये जब तक जुबान से ये नहीं कह देंगे कि हम इस निकाह पर राजी हैं तब तक इनको खियार बुलूग रहेगा भाई। या कोई ऐसा अमल कर दें जिससे रजामंदी का इजहार हो जाए, जो रजामंदी पर दलालत कर दे। मसलन लड़का बालिग हो गया, अब इसको खियारे बुलूग शरीयत ने दे दिया, ये अपनी उस बीवी को महर भिजवा देता है तो मालूम हुआ ये इस निकाह पर राजी है, अब इसका खियारे बुलूग खत्म हुआ। या ये उस बीवी से सोहबत कर लेता है या उसका बोसा ले लेता है, मालूम हुआ वो इस निकाह पर राजी है, लिहाजा अब उसका खियारे बुलूग बातिल हो गया। जबकि इसी तरह सैयबा जब बालिग हो गई तो उसके लिए भी जुबान से इजाजत वो देगी, फिर ही उसका खियार बुलूग साकित होगा भाई। और वो जुबान से इजाजत दे दे या कोई ऐसा अमल कर दे जो दलालत करे इसकी रजामंदी पर, मसलन लड़के ने इसको महर भिजवाया था, इसने वो महर कबूल कर लिया, लेकर रख लिया, मालूम हुआ कि ये उस निकाह पर राजी है, तो फिर खियार बुलूग खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि खियार बुलूग तीन किस्म के अफराद को मिलता है, या वो बाकिरा होगी या सैयबा होगी या लड़का होगा। बाकिरा को खियार बुलूग मिला है तो वो थोड़ी देर भी खामोश रही तो उसकी खामोशी रजामंदी की अलामत है, लिहाजा अब उसका खियार बुलूग बातिल, निकाह लाजिम हो गया, अब काजी के पास जाकर भी जुदाई नहीं करवा सकती। और सैयबा जब बालिग हुई तो उसको खियार बुलूग मिलेगा, लेकिन उसका जुबान से इजाजत देना जरूरी है, या कोई ऐसा फेल करे जो रजामंदी पर दलालत करे, फिर खियार बुलूग बातिल होगा, वैसे बातिल नहीं। इसी तरह लड़का बालिग हुआ है तो उसका भी खियार बुलूग बाकी रहेगा जब तक वो जुबान से इजाजत ना दे दे या कोई ऐसा फेल ना कर ले जो रजामंदी पर दलालत कर रहा हो। बाकिरा का इख्तियार, थोड़ी देर भी खामोश रही तो वो खियार खत्म, लेकिन सैयबा बालिगा और वो लड़का जो बालिग है, इनका इख्तियार खत्म नहीं होगा जब तक ये जुबान से इजाजत या रद्द का ऐलान ना कर दें भाई। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए किताब पर, वयुश्तरतु फीहिल कज़ाउ बिखिलाफ़ खियारिल इत्क़ी, कि ये जो खियार बुलूग है इसके अंदर कजाए काजी जरूरी है, काजी इन दोनों में जुदाई करवाएगा, तफरीके काजी जरूरी है। वो जो बालिग होने वाला है उसने बेशक निकाह के फसख का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिर्फ उसके ऐलान से निकाह फसख नहीं होगा बल्कि बाकायदा काजी को जुदाई करवाना पड़ेगी। जबकि इसके मुकाबले में एक खियार इत्क है भाई, एक तो था खियारे बुलूग, दूसरा क्या है खियारे इत्क। खियारे इत्क इसे कहते हैं कि एक बांदी का आका ने किसी जगह निकाह करवाया हुआ था, तो ये बांदी है। और याद रखो बांदी की दो तलाकें होती हैं, आजाद औरत पर खावंद तीन तलाकों का मालिक होता है, जबकि बांदी पर खावंद दो तलाकों का मालिक होता है। तो हमारे यहां तलाक का दारोमदार औरत पर है। अगर औरत आजाद तो खावंद को तीन तलाकों का हक है, और अगर औरत बांदी है तो खावंद को दो तलाकों का हक है। खावंद पर नहीं एतबार, खावंद चाहे गुलाम हो चाहे आजाद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम के अकद में भी अगर आजाद औरत है तो आजाद औरत की तीन तलाकें होती हैं, लिहाजा इस गुलाम को तीन तलाकों का हक होगा। और आजाद के हक में अगर बांदी है तो बांदी पर खावंद को दो तलाकों का हक होता है, तो आजाद को भी दो ही तलाकों का हक होगा। मालूम तलाकों का दारोमदार किस पर है? औरत पर है, औरत पर है। अब मसला यह कि एक बांदी थी, आका ने उसका निकाह करवा दिया था किसी जगह पर, तो अब इसका खावंद इस पर दो तलाकों का मालिक है क्योंकि यह बांदी है। फिर इस बांदी को आका ने आजाद कर दिया कि जाओ तुम आज से आजाद हो, और जैसे ही आजाद होगी अब इसकी दो तलाकों की जगह तीन तलाकें हो जाएंगी। इस पर गोया पहले इसके गले में दो रस्सियां थी जो खावंद के हाथ में थी, और अब इसके गले में तीन रस्सियां हो जाएंगी। मालूम हुआ खावंद की मिल्कियत इस पर बढ़ रही है, लिहाजा शरीयत इसको इख्तियार देती है, यह भी निकाह को फसख कर सकती है। ये बांदी जिसको आका ने आजाद किया है ये मनकूहा है किसी की, तो पहले इस पर खावंद को दो तलाकों का हक था, अब आजादी के बाद वो तलाकें बढ़कर कितनी हो जाएंगी? तीन हो जाएंगी। तो इसके ऊपर खावंद की मिल्कियत बढ़ रही है, इसको नुकसान हो रहा है, लिहाजा शरीयत ने इसको इख्तियार दे दिया कि तुम चाहो तो निकाह को फसख कर सकती हो। इसको कहते हैं खियारे इत्क भाई, खियारे इत्क यानी आजादी की वजह से जो इख्तियार मिला है बांदी को फसखे निकाह का। तो खियारे बुलूग में भी फसखे निकाह होता है, खियारे इत्क में भी फसखे निकाह होता है, लेकिन उलमा ने दोनों में फर्क किया है, दोनों में कई फर्क हैं भाई। खियारे बुलूग के अंदर अगर वो फसखे निकाह करते हैं बालिग होने वाले लड़का या लड़की, तो उनके फसख करने से निकाह फसख नहीं है, बल्कि काजी का फैसला भी जरूरी है कि काजी जुदाई करवाए। जबकि खियार इत्क जो है इसके अंदर काजी की तफरीक जरूरी नहीं। बांदी ने जब कह दिया मैंने ये निकाह फसख किया तो वो निकाह फसख हो गया, अब काजी के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं। फर्क समझ में आया? वजह क्या है इसकी? वजह भी यही समझ लो, याद रखो ये जो फसख निकाह किया जा रहा है, चाहे खियार बुलूग में है चाहे खियार इत्क में, इसमें देखा जाए तो दो पहलू हैं भाई, एक है नुकसान को दूर करना और एक है इसमें दूसरे पर एक चीज को लाजिम करना। भाई देखो ना, सगीर या सगीरा हैं वो बालिग हुए हैं, किसी और वली ने इनका निकाह करवाया था, तो नुकसान का एहतमाल है, कहीं ऐसी जगह निकाह ना करवाया हो जो अच्छी नहीं है, तो नुकसान का एहतमाल है। और हर आकिल बालिग आदमी को इख्तियार है वो अपने आप को नुकसान से बचाए भाई, तो लिहाजा ये भी अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। तो देखा जाए ये जो निकाह फसख कर रहे हैं ये अपने से नुकसान को दूर कर रहे हैं, ये खियारे बुलूग या खियारे इत्क वाले ये फसख निकाह कर रहे हैं गोया अपने से नुकसान को दूर कर रहे हैं। सगीर और सगीरा वहां तो हो सकता है अच्छी जगह निकाह ना करवाया हो वली ने, वो अपने से इस नुकसान को दूर कर रहे हैं, और वो जो बांदी आजाद हुई है उसके ऊपर पहले दो तलाकों का हक था, अब खावंद को तीन तलाकों का हक मिल जाएगा, तो वो अपने से नुकसान को दूर कर रही है कि मेरे ऊपर नुकसान ना आ जाए। मालूम हुआ खियार बुलूग में भी दफ़े ज़रर है और खियार इत्क में भी दफ़े ज़रर है, और देखा जाए तो दोनों के अंदर इल्जाम भी है, यानी दूसरे पर एक चीज को लाजिम कर रहे हैं। भाई देखिए भाई, ये सगीर या सगीरा जब बालिग होंगे ये निकाह को फसख करेंगे, तो ये निकाह सिर्फ इस सगीर या सगीरा के लिए फसख हुआ या इनका वो जो खावंद या बीवी है उसके लिए भी फसख हो गया? उसके लिए भी फसख हो गया। मसलन देखो सगीरा है तो सगीरा का किसी से निकाह करवाया हुआ है, वो उसका खावंद है, तो सगीरा जब फसखे निकाह करेगी ये बालिग होने के बाद फसखे निकाह करेगी, तो ये फसखे निकाह सिर्फ इस पर नाफिज होगा या इसके खावंद पर भी नाफिज होगा? इसके खावन पर भी नाफिज होगा क्योंकि निकाह इन दोनों के दरमियान ही तो है, तो ये तो हम नहीं कह सकते इसके लिए निकाह फसख हुआ है, इसके खावन के लिए निकाह फसख नहीं हुआ। फसख हुआ है तो दोनों के लिए फसख हुआ है। तो लिहाजा ये खियार बुलूग हो या खियार इत्क हो, दोनों के अंदर निकाह को फसख किया जाता है। और फसख निकाह जो है मियां बीवी में से सिर्फ एक के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए भी फसख निकाह होता है। गोया इसमें दूसरे पर भी एक चीज को लाजिम किया जा रहा है। सगीरा ने अपना निकाह फसख कर दिया तो यह फसख सिर्फ इस पर नाफिज होगा या इसके खावंद पर भी नाफिज होगा? खावंद पर भी नाफिज होगा। गोया सगीरा एक बात को अपने खावंद पर लाजिम कर रही है, हालांकि शरीयत ने आपको यह इख्तियार नहीं दिया कि आप किसी और पर भी कोई चीज लाजिम कर सकें। इसी तरह बांदी जब अपने निकाह को फसख करेगी तो यह फसख सिर्फ बांदी के हक में नहीं है बल्कि यह फसख बांदी के खावंद के हक में भी फसख है। तो देखो बांदी भी खावंद पर इस फसख को लाजिम कर रही है। तो मालूम हुआ ये जो खियार बुलूग और खियार इत्क है इनमें दो पहलू हैं। एक एतबार से देखा जाए तो ये फसख करने वाले अपने आप से नुकसान को दूर कर रहे हैं, यानी दफ़े ज़रर कर रहे हैं
जी।
क्या कर रहे हैं? दफ़े ज़रर। और देखा जाए तो दूसरे एतबार से ये दूसरे शख्स पर भी इस फसख को लाजिम कर रहे हैं, तो ये मिन वजह इल्जाम भी है। देखा जाए तो ये खियार बुलूग और खियार इत्क मीन वजह दफ़े ज़रर है और मीन वजह ये इल्जाम अलल गैर है। और दफ़े ज़रर का तो शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है, आप अपने आप से ज़रर को दूर कर सकते हैं, लेकिन इल्जाम अलल गैर का शरीयत ने आपको इख्तियार नहीं दिया कि आप गैर पर भी कोई चीज लाजिम कर सकें। इल्जाम अलल गैर के लिए फिर काजी की जरूरत पड़ेगी। काजी क्या करेगा? जुदाई करवाएगा और उसको दूसरा जो खावंद है मसलन उस पर भी इसको लाजिम कर देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि खियार बुलूग हो या खियार इत्क, ये बाज एतबार से दफ़े ज़रर है और बाज एतबार से ये इल्जाम अलल गैर है। तो इसमें दोनों पहलू हैं, लेकिन सगीर और सगीरा के मसले में हमने दफ़े ज़रर का एतबार नहीं किया, इसको इल्जाम करार दिया। सगीर या सगीरा खियार बुलूग के जरिए अपना निकाह फसख करेंगे और इसमें दोनों पहलू हैं, दफ़े ज़रर वाला भी पहलू और इल्जाम अलल गैर वाला भी पहलू। हमने इल्जाम अलल गैर का एतबार किया, दफ़े ज़रर का एतबार नहीं किया। यूं कहेंगे ये जो सगीर और सगीरा अपना निकाह फसख कर रहे हैं ये इल्जाम अलल गैर है
जी।
ये भाई क्यों ये इल्जाम अलल गैर है? कहते हैं वजह यह कि इनके ऊपर जो नुकसान आ रहा है वह कतई और यकीनी नहीं
जी।
भाई किसी और वली ने निकाह करवाया था ना, हो सकता है उसने अच्छी जगह निकाह ना करवाया हो
जी।
लेकिन यह भी तो इहतमाल है, हो सकता है अच्छी जगह ही करवाया हो
जी।
तो मालूम हुआ यहां नुकसान जाहिर नहीं है, यहां नुकसान जाहिर नहीं है। तो यहां दोनों पहलू थे, दफ़े ज़रर का भी पहलू था और यहां इल्जाम अलल गैर का भी पहलू था, लेकिन वो जो ज़रर है वो तो खफी है
जी।
वो तो खफी है, वो ज़रर नुकसान तो जाहिर नहीं है। हो सकता है भाई ये अच्छा ही रिश्ता हो, तो इसमें ज़रर खफी को दफा करना पाया जा रहा है, लिहाजा इस दफा का हमने एतबार नहीं किया बल्कि यहां सिर्फ इल्जाम का एतबार किया कि ये जो सगीर और सगीरा निकाह फसख कर रहे हैं ये गैर पर एक चीज को लाजिम करना चाहते हैं, लिहाजा इसलिए इसमें काजी की तफरीक जरूरी है, काजी के पास जाना जरूरी है, क्योंकि ये दफ़े ज़रर है ही नहीं। यूं समझो ये क्या है? इल्जाम अलल गैर। फिर समझो दफ़े ज़रर तो है लेकिन वो ज़रर खफी है, जाहिर नहीं, लिहाजा इस दफ़े ज़रर का एतबार ही नहीं किया हमने। यूं समझो यहां दफ़े ज़रर है ही नहीं, सिर्फ इल्जाम अलल गैर है और इल्जाम अलल गैर के अंदर तो काजी ये काम कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते गैर पर कोई चीज लाजिम कर दें। जबकि बांदी के मसले में भी वहां भी दफ़े ज़रर भी है और इल्जाम भी है, लेकिन वहां हमने उसके दफ़े ज़रर होने का एतबार किया इसलिए क्योंकि वहां जाहिरी तौर पर बांदी पर मिल्कियत बढ़ रही थी खावन की। तलाकें दो से बढ़कर कितनी हो रही थी?
तीन
हो रही थी। तो वहां जरर जली था, जाहिर था। यहां सगीर और सगीरा में जरर जली नहीं था, खफी है। वो नुकसान क्या है? जाहिर नहीं है बल्कि पोशीदा है। और बांदी के मामले में नुकसान क्या है? जाहिर है, लिहाजा उसका एतबार करना पड़ेगा। तो बांदी जो फसल निकाह कर रही है वो दफे जरर है, वो इल्जाम नहीं है, वो दफ़े। और ये जो सगीर और सगीरा जो निकाह फसख कर रहे हैं ये दफ़े ज़रर नहीं, क्योंकि ज़रर तो खफी है, ये इल्जाम है। تو صغیر اور صغیرہ کا خیار بلوغ کس لیے ہے؟ اس سے الزام آئے گا دوسرے پر، دفع ضرر ہے تو لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے، اور باندی جو نکاح فسخ کر رہی ہے وہ دفع ضرر ہی ہے کیونکہ وہاں ضرر ظاہر ہے، تو اس دفع ضرر کا اعتبار کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دفع ضرر کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ دفع ضرر ظاہر ہے. باندی کے اوپر دو سے بڑھ کر طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں؟ تین ہو رہی ہیں. تو لہذا باندی جو خیار عتق استعمال کرے گی وہاں دفع ضرر ہے، اور دفع ضرر کا تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، وہاں قاضی کے پاس جانے کی آپ کو حاجت نہیں. لہذا اس لیے باندی جب خیار عتق استعمال کرے گی تو نکاح فسخ ہو جائے گا اور قاضی کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن صغیر اور صغیرہ جو ہیں یہاں پر جو ہے الزام علی الغیر ہے، لہذا یہ نکاح فسخ کریں گے تو پھر اب قاضی کے پاس جا کر باقاعدہ تفریق اور جدائی کروانا پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، اور یہ خیار بلوغ کے اندر قضاء یعنی قاضی کے فیصلے کی شرط لگائی جائے گی بخلاف خیار عتق کے، یعنی اس میں قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہوگی. لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِيٍّ، اس لیے کیونکہ فسخ کرنا یہاں پر یعنی خیار بلوغ میں جو فسخ ہے لدفع ضرر خفی، یہ ضرر خفی کو دور کرنے کے لیے ہے. ایک نقصان ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا نقصان ہے، اس چھپے ہوئے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے. وہ ہوا تمکن الخلل، اور وہ نقصان کیا تھا؟ کہ خلل آ گیا ہو نکاح کے مقاصد میں، کیا آ گیا ہو؟ خلل آ گیا ہو، اچھی جگہ ہو سکتا ہے نکاح نہ کروایا ہو. ولہذا یشمل الذکر والانثی، اور اسی لیے یہ جو خیار بلوغ ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے. بے خیار عتق اور خیار بلوغ، ایک فرق تو یہ ذکر ہو گیا ان دونوں میں، کیا فرق ہے؟ کہ خیار بلوغ کو الزام شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاء قاضی کی ضرورت ہے، اور خیار عتق کو دفع ضرر شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاء قاضی کی ضرورت نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ خیار بلوغ جو ہے اس میں وہ نقصان آیا کہ وہ نکاح کے مقاصد میں خلل آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اچھی جگہ نکاح نہیں کروایا تو ہو سکتا ہے اس میں خلل آ گیا ہو، اور یہ خلل تو صغیر اور صغیرہ دونوں کے حق میں ہو سکتا ہے، لہذا صغیر اور صغیرہ دونوں کو یہ خیار بلوغ ملے گا. دونوں میں احتمال ہے، باپ دادا کے علاوہ نے کسی نے نکاح کروایا ہے، ہو سکتا ہے اچھی جگہ نہ کروایا ہو، تو یہ احتمال تو صغیر کے لیے بھی ہے اور صغیرہ، لہذا دونوں کو اختیار ملے گا. جبکہ باندی کو جو خیار عتق ملتا ہے وہ ملکیت کی زیادتی کی وجہ سے ملتا ہے، تو وہ صرف باندی کو ملے گا، غلام کو نہیں ملے گا. مثلا غلام کا آقا نے کسی جگہ نکاح کروایا ہوا تھا تو غلام کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ دو نہیں بھائی، عورت کو دیکھیں گے، اگر غلام کی بیوی آزاد عورت ہے تو اس کو تین طلاقوں کا حق ہے، اور اگر اب باندی ہے اس کی بیوی تو اس کو دو طلاقوں کا حق ہے. تو اب غلام کو آقا نے آزاد کر دیا تو یہ اب غلام جو ہے اس کو خیار عتق نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ غلام پر تو ملکیت نہیں بڑھ رہی، باندی پر تو دو طلاقوں سے بڑھ کر تین ہو رہی تھیں، وہاں تو ملکیت بڑھ رہی تھی لیکن غلام پر تو کوئی ملکیت نہیں بڑھ رہی، لہذا یہاں جو خیار عتق ہے وہ صرف باندی کو ملتا ہے، غلام کو نہیں ملتا. تو یہ دوسرا فرق آیا. پہلا فرق کیا تھا خیار بلوغ اور خیار عتق میں؟ کہ خیار بلوغ وہ الزام علی الغیر شمار کیا جاتا ہے، اور خیار عتق جو ہے وہ اس کو دفع ضرر شمار کیا جاتا ہے. دوسرا فرق یہ کہ خیار بلوغ صغیر اور صغیرہ دونوں کو ملے گا، جبکہ خیار عتق صرف باندی کو ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِيٍّ، اس لیے کیونکہ یہاں پر جو فسخ ہے یعنی خیار بلوغ کے اندر وہ ضرر خفی کو دور کرنے کے لیے ہے. وہ ہوا تَمَكُّنُ الْخَلَلِ، اور وہ ضرر خفی کیا ہے؟ وہ خلل کا آنا ہے، یعنی نکاح کے مقاصد میں خلل کا آنا ہے. وَلِهَذَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی لیے یہ خیار بلوغ شامل ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو، یعنی صغیر کو بھی ملے گا اور صغیرہ کو بھی. فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ، تو چونکہ یہ ضرر خفی ہے، یہ ضرر کیا ہے؟ خفی ہے فجعل الزاما تو لہذا اس لیے خیار بلوغ کو الزام قرار دیا گیا فی حق الاخری دوسرے کے حق میں فیفتقر الى القضاء تو لہذا اس لیے یہ قضاء قاضی کا محتاج ہے قاضی کے فیصلے کا محتاج ہے وخیار العتق لدفع ضرر جلی اور خیار عتق جو ہے ضرر جلی کو دور کرنے کے لیے ہے جلی کا معنی ظاہر ظاہر کہتے ہیں وخیار العتق لدفع ضرر جلی اور خیار عتق جو ہے وہ ظاہری نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے وہو زیادۃ الملک علیہا اور وہ ضرر جلی کیا ہے زیادۃ الملک علیہا باندی کے اوپر ملکیت کا زیادہ ہونا ہے کہ خامن کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے دو کے بجائے اب تین طلاقوں کا مالک بن رہا ہے ولہذا یختص بالانسا اسی لیے یہ خیار عتق جو ہے وہ مؤنس کے ساتھ خاص ہے یعنی صرف باندی کو ملے گا فاعتبر دفعا لہذا اس لیے اس کو دفع اعتبار کیا گیا اس میں بھی الزام علی الغیر ہے لیکن یہاں چونکہ نقصان زیادہ آ رہا ہے لہذا اس کو دفع ہی شمار کیا گیا گویا باندی اپنے سے نقصان کو دور کر رہی ہے دفع کر رہی ہے تو کہتے ہیں فاعتبر دفعا لہذا اس کو دفع اعتبار کیا گیا والدفع لا يفتقر الى القضاء اور نقصان کو دور کرنا یہ قضاء قاضی کا محتاج نہیں ہے تو کہتے ہیں والدفع لا يفتقر الى القضاء اور دور کرنا دفع کرنا یعنی نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنا لا يفتقر الى القضاء یہ قضاء کا یعنی قاضی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہے آگے دیکھیے ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ صغیر یا صغیرہ ان کا کسی نے پہلے سے نکاح کروا دیا کسی ولی نے باپ دادا کے علاوہ اب ان کو بالغ ہونے پر خیار بلوغ ملے گا تو اگر ان کو نکاح کا پتہ ہی نہ ہوا نکاح کا بعد میں پتا چلا بالغ ہونے کے کافی عرصے بعد جا کر پتا چلا تو کیا ان کا نکاح سے لا علم ہونا عذر ہے کیا ان کو پھر شریعت خیار بلوغ دے گی تو جواب دیں گے صاحب ہدایہ کہ ہاں بھائی اصل نکاح سے جب یہ لا علم ہیں تو یہ عذر ہے لہذا ان کو جب نکاح کا علم ہو جائے گا تو پھر ان کو پھر خیار بلوغ مل جائے گا لیکن اگر ان کو نکاح کا تو پتا تھا لیکن خیار بلوغ کا پتا نہیں تھا کہ شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا بالغ ہونے کے بعد عرصے بعد ان کو جا کر پتہ چلا خیار بلوغ کا کہ ہمیں شریعت نے خیار بلوغ کا اختیار دیا تھا تو کیا یہ خیار بلوغ سے لا علمی یہ عذر شمار ہوگی کیا ان کو پھر شریعت خیار بلوغ دے دے گی اس وقت کہتے ہیں نہیں خیار بلوغ سے لا علمی کوئی عذر نہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے نکاح سے لا علمی تو عذر تھا کیونکہ نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہوگا تو پھر ہی اس کی اجازت دیں گے یا اس کو رد کریں گے تو وہ تو عذر تھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہے اب آپ کو اختیار ہے آپ اپنا اختیار استعمال کر لیں لیکن خیار بلوغ سے لا علمی اس کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اب ان کا اپنا قصور ہے یہ دارالاسلام میں رہتے ہیں یہاں تعلیم کے مواقع موجود ہیں اور نیز تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بھائی حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور ان کو خیار بلوغ کا پتہ نہ چلا لہذا اب یہ کوئی عذر نہیں ہے بعد میں پتہ چلا ہے تو اب ان کو خیار بلوغ نہیں ملے گا بھائی دیکھیے بھائی ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة ثم عندهما پھر طرفین کے نزدیک بھائی طرفین کو ذکر کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو خیار بلوغ کے قائل ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک تو خیار بلوغ ملتا ہی نہیں ہے چاہے باپ دادا کروائے چاہے کوئی اور نکاح کروا دے بات سمجھ میں آگے اس لیے طرفین کو ذکر کیا کہتے ہیں ثم عندهما پھر طرفین کے نزدیک اذا بلغت الصغيرة جب صغیرہ بالغ ہو گئی وقد علمت بالنكاح اور تحقیق اس کو نکاح کا پتا تھا فسكتت تو وہ خاموش رہی میں نے بتایا باقیرہ جو ہے اس کی خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے لہذا جس مجلس میں یہ بالغ ہوگی جس مجلس میں اس کو حیض جاری ہوگا اسی وقت فوراً فسخ نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رد کرے نکاح کو فسخ کا اعلان کرے تو کہتے ہیں ثم عندهما پھر طرفین کے نزدیک اذا بلغت الصغیرہ تو جب صغیرہ بالغ ہو گئی وقد علمت بالنکاح اس حال میں کہ وہ نکاح کے بارے میں جانتی تھی فسکتت تو یہ خاموش رہی فہو رضا تو یہ رضامندی ہے وان لم تعلم بالنکاح اور اگر اس کو نکاح کا علم نہیں تھا فلہ الخیار تو اس کو اختیار ہے حتی تعلم فتسکت یہاں تک کہ یہ جان لے پھر خاموش رہے نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ عذر ہے لہذا جب اس کو نکاح کا پتہ چلے گا اب فوراً اس کو خیار بلوغ مل گیا اب اگر یہ خاموش رہے گی فوراً رد نہیں کرے گی تو اب اس کا خیار ختم ہو جائے گا یہ معنی ہے اس کو اختیار رہے گا حتی تعلم فتسکت یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے پھر یہ خاموش رہے شرط العلم بأصل یہاں سے وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل نکاح سے لا علمی کو ذکر کیا کہ اصل نکاح سے لا علمی عذر ہے یہ جو اوپر متن میں آیا وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ لیکن خیار بلوغ سے لا علمی جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے لا علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں شرط العلم بأصل النکاح امام محمد رحمہ اللہ نے اصل نکاح کے علم کی شرط لگائی لأنها لا تتمکن من التصرف الا به اس لیے کیونکہ یہ صغیرہ جو بالغہ ہو گئی ہے یہ قادر ہی نہیں ہے تصرف کرنے پر الا بھی مگر اس علم کے ذریعے یعنی اس کو نکاح کا علم ہوگا تب ہی تصرف کر سکے گی کہ اجازت دے گی یا اجازت نہیں دے گی تو اس کے بغیر تو یہ تصرف پر ہی قادر نہیں ہوگی والولی یتفرد بھی اور ولی جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے اس اختیار میں اس نکاح کروانے میں ولی تو کیا ہے اکیلا بھئی دیکھو یہ جو ولایت اجبار دی ہے شریعت نے ولی کو یعنی یہ باپ دادا کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ باپ دادا میں تو خیار بلوغ نہیں ملتا پھر جو بھی ولی ہے اس کو شریعت نے ولایت اجبار دی ہے یعنی یہ صرف ولی کا اختیار ہے اس میں اس کو صغیر یا صغیرہ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ان سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اختیار اس کا اپنا ہے تو وہ نکاح کروا دے گا صغیر اور صغیرہ سے پوچھے گا بھی نہیں تو ان کو تو نکاح کا پتہ ہی نہیں چلے گا لہذا یہ عذر ہے ان کو نکاح کا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ عذر ہے یہ معنی ہے والولی یتفرد اور ولی جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے اس میں یعنی یہ اسی کا اختیار ہوتا ہے اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں تو ولی اس میں اکیلا ہوتا ہے فعذرت بالجہل تو لہذا یہ جو صغیرہ جو بالغہ ہو گئی فعذرت بالجہل یہ معذور ہے لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ولم يشترط العلم بالخيار اور امام محمد رحمہ اللہ نے علم بالخيار کی شرط نہیں لگائی کہ اس کو خیار بلوغ کا بھی علم ہونا چاہیے اس کی شرط نہیں لگائی لأنها تتفرغ لمعرفة احکام الشرع اس لیے کیونکہ اس کو فراغت ہوتی ہے شرعی احکام کے جاننے کے لیے بھئی باندی ہے وہ تو کام کاج میں مصروف رہے گی وہ تو آقا کی خدمت میں مصروف رہے گی جبکہ یہ جو صغیرہ آزاد ہے یہ تو فارغ ہے یہ تو شرعی احکام سیکھ سکتی ہے یہ شرعی احکام کے لیے فارغ ہے دارالاسلام میں رہتی ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم لہذا اس کو مسائل سیکھنے چاہیے تھے اس نے نہیں سیکھے تو لہذا یہ اسی کا قصور ہے بھئی کہتے ہیں لأنها تتفرغ لمعرفة احکام الشرع اس لیے کیونکہ یہ جو صغیرہ تھی اب جو بالغہ ہو گئی ہے یہ فارغ تھی شرعی احکام جاننے کے لیے والدار دار العلم اور یہ جو دار ہے یہ جو وطن ہے یہ بھی دار العلم ہے یعنی دار الاسلام جو ہے وہ بھی دار العلم ہے بھئی یہاں تعلیم کے مواقع موجود ہیں تعلیم کے ادارے موجود ہیں تو لہذا اس کو مسائل کا علم ہونا چاہیے تھا فلم تعذر بالجہل لہذا یہ معذور نہیں سمجھی جائے گی لا علمی کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی بخلاف المعتقتی بخلاف معتقہ کے یعنی وہ باندی جس کو آزاد کر دیا گیا بھئی اگر باندی کو علم نہیں تھا خیار عتق کا آقا نے اس کو آزاد کر دیا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اپنے نکاح کو فسخ کر دے لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے شریعت نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کچھ مدت کے بعد کسی نے اس کو بتایا تمہیں تو جب آقا نے آزاد کیا تھا تمہیں تو خیار عتق مل جاتا ہے تو کیا اس کا یہ خیار عتق سے لا علمی عذر ہے क्या फिर जब इसको इत्तला मिल गई खियार इत्क की तो क्या अब इसको फिर खियार इत्क मिल जाएगा? कहते हैं हां, इसकी लाइल्मी उजर है, इसको फिर खियार इत्क मिल जाएगा। उसी मजलिस के अंदर जिसमें इसको इलम हुआ खियार इत्क का, उसके अंदर यह अपने निकाह को फसख कर सकती है। भाई कहते हैं बिखिलाफिल मुअतकति, बखिलाफ उस औरत की जिसको आजाद कर दिया गया। लिअन्नल अमता ला ततफर्रगु लिमारिफतिहा, इसलिए क्योंकि बांदी उसके पास तो फरागत नहीं होती अहकाम शरीयत के जानने की, वो तो आका की खिदमत में मशगूल होती है। फ़ौज़िरत बिल जहली बि सुबूतिल खियारी, तो वो माजूर होगी, उसको माजूर समझा जाएगा। बिल जहली भी सुबूत खियारी, सुबूत खियार से जहालत की वजह से, तो उसको माजूर समझा जाएगा। सुबूत खियार से जहालत की वजह से, भाई यहां तर्जमा समझ लो, यहां तर्जमा मुश्किल है। फ़ौज़िरत, तो इसको माजूर समझा जाएगा। बिल जहली, ये बासबबिया है, बिल जहली जहालत की वजह से, ला इल्मी की वजह से इसको माजूर समझा जाएगा। और किस चीज से ला इल्मी? बि सुबूत खियारी, ये भी सुबूत खियार को जहल से जोड़ें, और खियार से मुराद खियार इत्क है। खियार इत्क के सुबूत से जो इसकी लाइल्मी है, खियार सुबूत से इसकी लाइल्मी की वजह से इसको माजूर समझा जाएगा। तो बिल जहल में बा है सबबिया, और बि सुबूत खियार में ये जो बा है ये जहल से मुताल्लिक है। तो तर्जमा फिर देख लें, फ़ौज़िरत, तो इसको माजूर समझा जाएगा। बिल जहली भी सुबूत खियारी, तर्जमा आखिर से होगा, खियार इत्क के सुबूत से लाइल्मी की वजह से इसको माजूर समझा जाएगा। खियार इत्क के सुबूत से लाइल्मी की, सुबूत के लफ्ज को जरा निकाल दें, फ़ौज़िरत बिल जहली भी सुबूत खियारी, तो इसको माजूर समझा जाएगा खियार इत्क से लाइल्मी की वजह से। बात समझ में आ गई। यहां एक इश्काल होता है, इश्काल यह होता है कि सगीर या सगीरा यानी नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो तो मुकल्लफ नहीं, उन पर तो शरिया अहकाम लागू नहीं होते, लेकिन आपकी तकरीर से यह लाजिम आया कि मालूम हुआ सगीर या सगीरा पर भी तालीम वाजिब थी, जरूरी शरिया अहकाम को सीखना इन पर वाजिब था। यह तो आपने बच्चों को भी मुकल्लफ बना दिया, हालांकि बच्चे तो मुकल्लफ नहीं होते। तो जवाब याद रखना, उलमा फरमाते हैं कि जब सगीर या सगीरा बुलोगत के करीब पहुंच जाएं तो अब इन पर जरूरी शरई मसाइल का सीखना वाजिब हो जाता है, या इनका जो वली है उस पर वाजिब हो जाता है कि इनको तालीम दे जरूरी मसाइल की। भाई चुनांचे इसीलिए हदीस में आता है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में उनकी पिटाई करो, यानी अगर नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। तो देखो, नमाज का हुक्म देने का कहा गया और नमाज के छोड़ने पर पिटाई करने का हुक्म दिया गया, तो मालूम हुआ इन पर यह नमाज और दीगर जरूरी मसाइल का सीखना लाजिम हो जाता है बालिग होने से पहले ही। भाई बात समझ में आ गई। चलिए बस, बेहदा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।